में, और तीसरे को क्यों नहीं सुनने दिया? किंतु हाँ, उस कथा को महाप्रभु जी पूछ रहे हैं कि वो लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं परस्पर, और उसका कहीं भी गया ना आवाज। हमारे रूप गोस्वामी हैं और सब लोग हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके कानों में आएगा कि नहीं ये कथा? आएगी, और उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच जाती है। इस तरह से जगत का कल्याण, तो दोनों का एक भाव होना चाहिए। नहीं तो यदि एक अधिकार के नहीं हुए तो थोड़ा सा यदि परीक्षित ने पूछ लिया ये, जो कृष्ण तो भगवान हैं, उन्होंने ऐसा गर्हित कर्म, लज्जाकर कर्म, घृणास्पद कर्म क्यों किया जो गोपियों को नंगा किया और अकेले में उनके साथ में राश किया, ये क्या बात? उनके साथ में जो नहीं करना चाहिए वो कर्म किए, जिसको सुन करके वो बड़े बिगड़ गए और उनका भावावेश नष्ट। यदि वो प्रश्न नहीं होता तो हो सकता था वो रासलीला के बाद में और भी कुछ कहते और कथाएं कुछ दूसरी होती। एक थोड़ा सा अधिकार में इधर सब उन्होंने पूछ दिया लोगों को दे करके, इसलिए उनका कोई खूब ऊंची स्थिति का गोपियों के यह सब वर्णन कर रहा है, और उसमें कोई आकर के कनिष्ठ अधिकारी पूछ दे गोपियों को उन्होंने नंगा करके क्यों बुलाया, क्यों देखा, और वक्ता को कहाँ ऊपर से नीचे उतरना, कहाँ आना पड़ेगा, लौकिक नीति में आना पड़ेगा, जहाँ पर नीति का स्थान ही नहीं है, वो नीति से बहुत ऊपर है, अप्राकृत वहाँ पर सब भाव है, वहाँ पर नीचे आया। बस उनकी कथा में रंग भंग हो गया, इसलिए दोनों का एक होना चाहिए। इसलिए इसमें श्लोक में कहा गया, जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं वक्ता श्रोता भी, वैसे पहले प्रश्नकर्ता वैसे हैं और तब वक्ता भी वैसे और फिर श्रोता भी वैसे। श्रोता में मैंने परीक्षित महाराज, प्रश्नकर्ता और श्रोता दोनों हैं, और वक्ता हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी के संबंध में आप जानते ही हैं ये कौन है, जागतिक दृष्टि से भी वैराग्य पर है, जन्म से ही अवधूत हैं, परमहंस चूड़ामणि हैं, और श्रिया जी के जो सुख हैं वो तो अभी छोड़ दिए। महाराज परीक्षित सुखदेव के गुण से आकृष्ट होकर के उनके गुणों को बतलाया, ये कैसा, ये वक्ता कैसे हैं। एक तो भगवत तत्व जानने वाले हैं, लीला कथाओं को संपूर्ण रूप से जानने वाले, भूत भविष्यत सबको जानने वाले हैं, जीवों का बंध और मोक्ष कैसे होता है ये भी जानने वाले हैं, समस्त शास्त्रों का तात्पर्य उनको एकदम ज्ञान है। एक तरफ ये ऐसे जीवन मुक्त हैं, एक तरह से। अब उन्होंने जबकि परीक्षित महाराज जी ने उनको गुणों का वर्णन किया, तो सुखदेव गोस्वामी ने भी परीक्षित महाराज के गुण से आकृष्ट होकर के उनको इस श्लोक में धन्यवाद दे रहे हैं। वाह, इतनी सुंदर तुमने कथा आरंभ की, तुमने प्रश्न किया इतना सुंदर। इसलिए देखो, वासुदेव कथा प्रश्न, वासुदेव कथा का जो प्रश्न है वो तीन पुरुषों को उद्धार कर देता है, और उसका उत्तर कोई दे वक्ता तो फिर क्या होगा? आराय समझ में कि नहीं? प्रश्न से ही तीनों कुलों का, तीनों लोगों का उद्धार हो गया, और यदि उसका सम्यक पूर्वक यदि कोई वक्ता हो और बोले इस विषय पर, तब न जाने क्या होगा। और जो कोई उनके भावों को हृदयंगम करके अत्यंत आनंद के साथ में इस कथाओं का रसास्वादन जो करते हैं, उनकी क्या होगी गति? उनकी गति परीक्षित महाराज जी के समान हो जाएगी। इसलिए प्रश्न करने वाले के लिए अभी कहा, अभी कथा वाले के लिए अभी कुछ नहीं कहा, प्रश्न का ही इतना महत्व है। इसलिए कहा गया क्या वो गीता में जो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, इसीलिए कहा गया।
प्रश्न उदित नहीं हो, कथा के लिए प्रश्न नहीं करे, मौन हो करके रहे, ये उचित नहीं। गुरु के पास में तो मौन रहना ही नहीं चाहिए, कथावाचक के यहाँ मौन नहीं रहना चाहिए। बीच बीच में प्रश्न नहीं करने से श्रोता भी सो जाता है, वक्ता भी सो जाता है, श्रोता भी सो जाते हैं, देखता है इनको कुछ तो समझ में आता नहीं, क्या करें। और उस पर भी किसी को ईर्ष्या हो, जो ये प्रश्न कर रहा है, इनको बताया जा रहा है, तो क्यों बताया जा रहा है, ईर्ष्या होती है। अतः वो कृष्ण या अब कहेंगे और आगे दोनों इसका रसास्वादन कैसे करेंगे उसके लिए अब आगे कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित जी को कह रहे हैं, हे राजर्षि सप्तम, यहीं से संबोधन किया। देखो इस श्लोक में, दूसरे श्लोक में शायद है, अनशीलस्य नितरां मुनि सप्तम तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णु विद्यानि संशोधन। हे मुनि सप्तम, कौन कह रहा है, परीक्षित महाराज, हे मुनि सप्तम, मुनियों में सबसे श्रेष्ठ जो आप हैं, जदुवंश में अंश के साथ में अवतीर्ण जो भगवान हैं, उनके वीर्यों को, उनके प्रभाव को, उनकी लीला कथाओं को आप अंश बलदेव के सहित में, पूरा तो संभव नहीं है, तब तो अंश रूप में ही आप बोलिए, ये प्रश्न किया है कहते हुए उनको। तो उन्होंने मुनि सप्तम कहा और इन्होंने कहा क्या, राजर्षि सप्तम, जैसा उन्होंने कहा उन संबोधक करके, और श्रोता भी उनको ऐसे कह रहा है, वक्ता कह रहा है श्रोता को, राजर्षि सप्तम, ओ तुम्हारी सम्यक व्यवस्थो बुद्धि स्तव, हे राजर्षि सप्तम, भगवान की लीला कथाओं के श्रवण में तुम्हारी सम्यक प्रकार से व्यवसात्मिका बुद्धि है, जैसे गीता में भगवान ने बतलाया। जो लोग भगवान की कथा में, भगवान के नाम में, भगवान के भजन में जिनकी एकांतिक निष्ठा है, यही सुंदर व्यवसाय है, एकांतिक हो। और जो अव्यवसायीनम बुद्धयो अव्यवसायीनम अनंत शाखा, अनंत उनकी बुद्धि में शाखाएं होती हैं। क्या बुद्धि में शाखा होती है, कृष्ण भजन करूंगा, कृष्ण भजन का प्रचार करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करूंगा, मंदिर बनाऊंगा, पुस्तकें छापूंगा और सोने का मंदिर बनाऊंगा और सब लोगों को हरि कथा करूंगा, सब लोग प्रतिष्ठा देंगे जगत में, मैं एक सर्वोत्तम भक्त रहने के लिए सुंदर अटैच बाथरूम इत्यादि युक्त सुंदर सब व्यवस्था, ब्रह्मचारियों लोगों के लिए गाय पालूंगा, उनको रोज सवेरे शाम एक एक पौआ या आधा आधा किलो दूध दूंगा, राबड़ी मलाई छेना ले आऊंगा और सबको संतुष्ट रखूंगा, डॉक्टरों की व्यवस्था रहेगी, सब प्रकार की सुंदर व्यवस्था है। ये क्या है, बुद्ध व्यवसाय, अनंत शाखा, ये तो अच्छी में कहा, और ना जाने क्या क्या इसमें अनंत शाखा है। इसलिए बुद्धि जब एकाग्र हो जाए ना, इसी को कहते हैं निष्ठा, निष्ठा उसमें संपूर्ण को दूर करके भावों को, और उसमें स्थिर हो जाए, ये अनर्थ रहते हुए नहीं होता, इसलिए अनर्थों को दूर हो जाने पर बुद्धि ऐसे निश्चित हो जाए। अब हमको कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चाहिए, क्या, कृष्ण का भजन। अभी बुद्धि निश्चित नहीं हुई, कैसी तुमको भक्ति चाहिए कृष्ण की, कैसी चाहिए, ब्रजवासियों जैसी चाहिए, हो गई ना बुद्धि स्थिर, नहीं अभी भी, कौन से ब्रजवासी की तरह होने चाहिए, कहें जसोदा मैया जैसी, नंद बाबा जैसी, गोपियों जैसी हो गई ना, नहीं हुई। गोपियों का कहने से भी नहीं होगा। हम कहेंगे रूप गोस्वामी को, रघुनाथ दास गोस्वामी को, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, महाप्रभु के परिकरों को जैसे हुई थी वैसे, तब अभी ठीक। बस ऐसे ही एकांत चित्त लग जाए, ये व्यवसायिक काम अनर्थ रहते ये नहीं हो सकता। इसलिए ये कहते हैं तुम्हारी बुद्धि सब प्रकार से सम्यक प्रकारेण व्यवस्थित हो गई है, अर्थात प्राकृत तत्व और कर्तव्य के निर्णय में समर्थ हुई। मुझको क्या करना है, संसार नश्वर, जितना जो कुछ हम संग्रह कर रहे हैं कोई भी चीज संग में नहीं जाएगी, किंतु हाँ एक बुरी चीज संग जाएगी। मान लिया कि अर्थ संग्रह किया, अर्थ तो नहीं गया, किंतु अर्थ संग्रह की पिपाशा उसके प्रति आ सकती है, ये गई और तुम्हारा संस्कार बदल दिया, मालूम नहीं होता। लोग कहते हैं जो कुछ नहीं गया वो बद्ध अवस्था जैसी एक गई, संस्कार गया जो उसको बांध और कुछ नहीं गया। इसलिए संसार ऐसा है। इसलिए हम कैसा प्रयास करेंगे, कृष्ण में एकांतिक बुद्धि हो, स्थिर हो जाए, उनकी कथा श्रवण में, उनके लीला स्मरण में, उनका नाम कीर्तन करने में, उनके लीला के स्थानों में जाने में, उनके प्रति स्तव स्तुति इत्यादि जो है नौधा भक्ति करने में, ये हमारा लक्ष्य है बस। इसलिए गीता में कहा व्यवसात्मिका बुद्धि रे केह एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। अर्जुन व्यवसात्मिका बुद्धि एक निष्ठ होती है, इसी को व्यवसात्मिका बुद्धि कहते हैं। अव्यवसायी लोग हैं, अनर्थ युक्त व्यक्ति जो है उनकी बुद्धि कैसी होती है, अनंत प्रकार की होती है, बहु अमांतर भेद युक्त होती है। अभी बुद्धि स्थिर नहीं हुई है, अभी स्थिर ही नहीं कर पा रहे ये क्या करना चाहिए, अभी संसार में रहना है, संसार में नहीं रहना है, संसार में यदि रहेंगे तो भजन नहीं होगा, और संसार त्याग करेंगे तभी कोई गारंटी नहीं है जब भजन करेंगे। बहुत से लोग तो संसार में रह करके भगवान को पाया। पांचों पांडवों ने, राजा जनक ने, राम के बहुत से भक्तों ने, सुग्रीव इत्यादि सब ने, ये तो गृहस्थ रह करके ही पाया। किंतु शास्त्रों में लिखा ये जलती हुई आग है, इसीलिए नारद, सुखदेव गोस्वामी जी, महाप्रभु जी और जो ऋषि महर्षि जो हुए हैं सब छोड़ करके गए हैं। फिर देख कहते हैं जैसे, अरे भाई चले तो गए, बात तो ठीक है, तो कोई कोई रह सके, बाकी कुछ लोग तो फिर वहां से भी गिर गए, क्या करना चाहिए। बहुत तरह की भविष्य बातें आती हैं, यदि मान लिया कि मैं भजन नहीं कर सका और कोई हमको करने दे दे विघ्न बाधा आई अंत में, तो क्या होगा, क्या करेंगे। इसलिए अभी से ही घर, रुपया पैसा कुछ सुरक्षित रखा जाए जो काम आएगा, और निश्चिंत रूप में बैठ करके भजन करें। तो फिर उन लोगों ने त्याग क्यों किए, इसी उधेड़ भूमि में रह जाते हैं, तरह तरह की शाखा। इसलिए कहते हैं जागतिक बुद्धि अव्यावसायिक है। जागतिक जो बुद्धियां हैं वो कैसी है, अव्यवसायी, और परतत्व में निष्ठा है, इसको कहते हैं ऐकांतिक। किंतु ऐसी निष्ठा कैसे होगी, कैसे होगी, ऐसा जो व्यक्ति है उसका साथ रहने से। भक्ति किस चीज से होती है, विद्या से होती है, न धन से होता है, न किसी और संसारिक अनुकूल परिस्थितियों से होता है, कैसे होती है, कैसे ये भक्ति होगी, बिना ज्ञान के भक्ति कैसे होगी, और बिना पढ़े हुए ज्ञान कैसे होगा, और बिना संस्कृत के ज्ञान के कैसे होगा ज्ञान, कैसे होगा? और ज्ञान करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है,
बिना पैसे के
वो भी नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि पैसा ही सबका मूल है, इसलिए पैसे संग्रह करो, इसके बाद में अध्यापक ठीक करो, इसके बाद में पढ़ो लिखो, अंत में भगवान की भक्ति हो। नयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया भवना सुखेन। नहीं, साधु संघ का जन्म मूल है साधु संघ। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था से भक्ति करे, अपनी ममता कृष्ण में लगाए, और कुछ में जाएगा, जो कुछ हमने सीख करके आकर के वैराग्य हुआ उसको लगाना है, वही बढ़ा करके ले जाएगी भगवान के। और बीच में कुछ और संग्रह करके तब फिर भक्ति करेंगे, ये शाखा ही अनंत हो गया, गड़बड़ कर देगा, उसमें कोई कामना वासना आकर के उसे विचलित कर सके। इसलिए जितना जो है उसी से भक्ति करेंगे, भक्ति ही भक्ति को बढ़ाएगी, भक्त्या भक्ति से ही भक्ति होगी, और किसी चीज से नहीं होगी। हृदय में प्रेम कहां से लाएगा ये? इसलिए पढ़ते 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 इन शिव जी को अपने आप तत्व ज्ञान होगा, कथाओं के सुनने से अपने आप तत्व ज्ञान होगा। और सुखदेव गोस्वामी ने व्याकरण उकरण या कोई शास्त्र पढ़ा कि जन्मते ही तो वो चले गए जंगल में? पूर्वजन का संस्कार भी तो चाहिए, ये संस्कार इसी सबसे बनता है, साधु संग से हरि कथा से, यही हमारी मूल पूंजी है, इसके द्वारा भक्ति होगी। सुखदेव गोस्वामी महाराज प्रश्न परीक्षित महाराज जी का प्रश्न सुनकर के बोले, ओ तुम्हारी बुद्धि व्यवसात्मिका है, क्या तुमने राजभवन छोड़ दिया, राजा की पगड़ी या ये मुकुट सब विषय छोड़ दिया, और एक धोती पहनकर साधारण गंगा के तट पर गंगा के तरफ में मुख करके बैठ गए। अब न खाऊंगा न पीऊंगा न कोई चिंतन करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, बस प्रभु के लिए प्रार्थना करने लगे, जो प्रभु हमारा कल्याण कैसे हो। और सोची रहते थे भगवान के शरणागत होने से सुखदेव गोस्वामी को भेज दिया, और सब ऋषियों को भेज दिया, साथ ही साथ प्रश्न किया और भागवत होने लग गया। उन्होंने कहा कि अब हरि कथा सुनने के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं करूंगा, और वैसा ही प्रश्न करने लगे। बीच बीच में जब उनकी एक कथा समाप्त होती दूसरा प्रश्न तैयार, एक साथ में 10-9 प्रश्न कर दिए। इसके बाद में जब वो एक एक विषय समाप्त था, अब फिर प्रश्न करते चले गए, कुछ अबोध बन रहे हैं। ये कहते हैं कि यह अबोध नहीं है सुखदेव गोस्वामी, इसकी बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई है, सम्यक व्यवसाय हो गया है, एक निष्ठा हो गई है, साधारण व्यक्ति है। क्यों? गीता में ये जो कहा गया है, व्यासात्मिका बुद्धि रे के हो, इसकी कुछ विशेषता है। इसकी विवेचना करने पर ऐसा प्रतीत होता है नाना प्रकार के विषय निष्ठ बुद्धि को गीता में अव्यवसात्मिका, और कृष्ण में एक चित्त लगने को कहते हैं व्यवसात्मिका। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देखो कृष्ण की भक्ति को छोड़ करके और जितनी लौकिक बुद्धि है, कर्म योग तपस्या व्रत होम स्वाध्याय जो कुछ है, ये सब क्या है? अव्यवसायिक। और भगवान वासुदेव की लीला कथाओं में चित्त का लग जाना, यही केवल मात्र व्यवसात्मिका बुद्धि है। मृत्यु सब मृत्युम आपनोति जयह नानेव पश्यति, उपनिषदों में ऐसा कहा गया है। जो व्यक्ति प्राकृतिक नाना प्रकार के चिंताओं में रह करके तरह तरह की चिंता करता है, कामना करता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, व्यवसायत्मिक नहीं है, और अंत में उस संसार को ही प्राप्त होता है। और जिसकी कृष्ण में एक लीला कथा में निष्ठा है, नाम में निष्ठा है, कथाओं में निष्ठा है, वो क्या कृष्ण को ही प्राप्त करता है। ये श्रुति का वचन है। तरति शोक मोह आत्मवित, आत्मवित शोक मोह भय इत्यादि को पार कर जाता है। लीला कथाओं का फल भी बतलाया है, वो क्या है, अपने आप हरिकथा, हाँ, तस्मिन महान मुखरितो मधुभिष चरित्र पीयूष अशेष सरिता परिता समन्ति ताजे पिवंत निपगाढ़ करना। जिसको निपग्रहण करना मैंने अत्यंत आसक्ति के साथ में पान करते हैं, उनको शोक मोह भय भूख प्यास सब दूर हो जाता है और अंत में वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए लीला कथाओं के प्रति एक निष्ठ होना चाहिए। और इन परीक्षित महाराज जी को लीला कथा में निष्ठा हुई है। कैसी लीला कथा, वो भी सर्व कारण कारण जो कृष्ण है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान, कृष्ण के प्रति स्वयं भगवान के लीला कथाओं के प्रति इनकी एक निष्ठा हुई, और कुछ नहीं चाहते। तो ये कैसे उत्तम कोटि के ये श्रोता हैं। अब कहते हैं व्यास परीक्षित महाराज ने उनको मुनि सत्तम कहा और इन्होंने राजर्षि सत्तम कहा। उन्होंने कहा मुनि सत्तम, इन्होंने कहा जे ऋषि सत्तम, और उसमें एक और बढ़ा करके लगा दिया राजर्षि सत्तम, राज ऋषि सत्तम, तो ऋषि कहने से भी हो सकता था, अदला बदली हो जाती। उन्होंने कहा जे मुनि सत्तम और ये कहते सत्तम, बस बराबरी का उधार लेना देना बराबर हो जाता। किंतु सुखदेव गोस्वामी जी ने और इनको कुछ अपने से भी बढ़ा दिया आगे, इसलिए राज ऋषि ऋषि सत्तम कौन है, भरत महाराज, ये लोग ऋषि हैं। विश्वामित्र जी पहले तो राज ऋषि थे, राज ऋषि के बाद में क्या हुए, ब्रह्म ऋषि, किंतु ऋषि सप्तम नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए सप्तम, राजर्षि और ब्रह्मर्षि में क्या अंतर है। एक राजा से माने क्षत्रिय से ऋषि बना है, और एक बने हैं इसे उत्तम होकर के ब्राह्मण से। ये तो जातिगत एक भाव है, उसमें वो ऋषि हुए हैं ब्रह्मर्षि और राजर्षि, और ये सप्तम है ऋषियों में। क्यों, विश्वामित्र में ऐसी एक निष्ठा पहले नहीं थी, पीछे हुई रामचंद्र में, भक्ति में हुई है, किंतु उनसे इनका राजर्षि सप्तम होना बहुत उन्नत है, क्योंकि कृष्ण की लीला कथाओं में उनकी एकांतिक रूप से रुचि है। इसलिए कह रहे हैं, ये टीकाओं में कह रहे हैं, जो भरत इत्यादि राज ऋषिगण राजर्षि थे, किंतु तुम राजर्षि सप्तम हो, कृष्ण भक्त होते हैं। जो लोग कृष्ण भक्त होते हैं उनको सत कहा जाता है। जो कृष्ण में अनुरक्त हैं, भक्तों में भी अनुरक्त हैं, अनुरक्ति आ गई है, उनको सत्तर कहते हैं। और गोविंद के चरणों में प्रेम जिनको उत्पन्न हो गया है उनको कहते हैं सत्तम। परीक्षित महाराज जी को कृष्ण के चरणों में प्रेम है, इसलिए इनको राजर्ष राज ऋषि सत्तम। सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने परीक्षित को इंगित से कहा, तुमने हमको मुनि सत्तम कहा है, मैं मुनि सत्तम हूँ ठीक है, किंतु तुम हमसे श्रेष्ठ हो, कहने में कोई संकोच नहीं किया, तुम श्रेष्ठ हो। क्यों? कि ऋषि सत्तम और मुनि सत्तम बराबर था, किंतु आप में एक और अधिक गुण हो गया, आप राज राज ऋषि राजर्षि, अतः इनको प्रेम है, विशेष करके इसी के वजह राजर्षि होने के वजह से ही कृष्ण की डायरेक्ट कृपा इनको मिली। महाराज परीक्षित, बुद्धि सम्यक क्यों व्यवस्थित है? सुदेव गोस्वामी इसका हेतु करें, वासुदेव कथास्ते जज्जाता नैष्ठिकी रति। वासुदेव की लीला कथाओं में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, एक निष्ठा है, इसलिए क्यों भागवत के पहले ही पहले स्कंद के पहले ही अध्याय में शायद बतलाया गया है, सबई पुंसा यही इसमें है, यदि रुचि नहीं है सम एव केवलम, धर्मसुनिष्ठितं पुंसं विश्वक्षेनु कथा सुजा नोत्पादेन यदिरतिं समेव हि। भगवान की लीला कथाओं में जिनकी रुचि नहीं हुई उनका सभी परिश्रम बेकार, कुछ दिन ही नाम करेंगे इसके बाद नाम ही छोड़ देंगे यदि कथा में रुचि नहीं है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं किंतु हरि कथा में रुचि नहीं, हरि नहीं कथा सुनते हैं, कुछ दिनों के बाद में सेवा धरा रह जाएगा। इसलिए हरि कथाओं में रुचि यदि रहेगी तो उसका नाम के प्रति आदर भी बढ़ता जाएगा और सेवा में भी रुचि रहेगी, सब समय प्रसन्न रहेगा और उसकी भक्ति भी बढ़ती हो जाएगी। जिन लोगों को भगवान की कथाओं में रुचि नहीं है उनके लिए बहुत गड़बड़ी है, वो लोग सोचनीय है। इसलिए लीला कथाओं में रुचि रखने की चेष्टा करो, नहीं रुचि है तभी सुनेंगे, नहीं हरिनाम में रुचि रह रही है तभी हरिनाम करेंगे। वैष्णव के संग में रहने की इच्छा नहीं कर रही, मन कहता जी नहीं नहीं स्वतंत्र होकर के रहें तो भी तुम, इसलिए जोर करके रखना चाहिए, इसलिए किसी भी प्रकार से हरि कथा में जरूर रुचि होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार लोगों को तंग भी करता हूँ कि भाई हरि कथा में बैठो, पाठ में बैठो, यदि वो हमसे यदि कनिष्ठ भी है तो कोई बात नहीं, भगवान की कथा तो कह रहा है, उसमें शास्त्र में लिखा है, इसलिए सुनना चाहिए। वासुदेव क्यों कहा गया? सत्तम विशुद्धम वासुदेव सप्तितम, विशुद्ध सत्त में ही प्रभु स्थिर रहते हैं, जिसका अविशुद्ध सत्त नहीं हुआ प्रभु नहीं आते हैं, उन्हीं के पुत्र के रूप में आएंगे, इसलिए वसुदेव महाराज जी शुद्ध सत्त माने जाते हैं, सत्तम विशुद्धम वसुदेव सत्त, और उनके पुत्र में ही आए। यदि वह शुद्ध सत्व नहीं रहा, उनके प्रति ममता प्रीति नहीं रही, वो नहीं आएंगे। तुम्हारी ऐसे कृष्ण के प्रति, वासुदेव के प्रति, उनकी लीला कथाओं के प्रति नैष्ठ की रति उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम राजर्षि सत्तम हो और तुम्हारी बुद्धि भी व्यवस्थित है। इसलिए लीला कथा में श्रवण में बहुत सुंदर रुचि होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, ममता होनी चाहिए। हमारे जीवन का यही कारण है, हमारे भक्ति का यही कारण होगा। जीवों को तरह तरह के संदेह होते हैं, अच्छा भाई यहाँ पर कितना दिन अभी और चलेगा, इसके बाद में क्या होगा, क्या होगा इसके बाद, जब वैष्णव लोग ऐसे नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जीवन का निर्वाह होगा, ये तो हम लोगों की, और जो संसार में है उनकी क्या क्या संदेह उनका होता है, उनके संदेह और प्रश्न का कोई अंत नहीं है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, दुर्योधन की तरह में और धृतराष्ट्र की भांति। धृतराष्ट्र राजवन में बैठा है, खाना भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, और वो क्या सोचता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत। जान रहा है कि युद्ध करने के लिए गए हैं और जानता है हमारे बेटे युद्ध संधि नहीं करेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर क्यों पूछ रहा है, संदेह, क्या संदेह। अच्छा, यदि पांडवों की बुद्धि विपरीत हो जाए और वो संतुष्ट हैं धर्म क्षेत्र में जा करके, ये अब क्या करना चाहिए, जरूरत नहीं है, ये संसार नश्वर, इसके लिए युद्ध करके क्या है, उनको विरक्ति संसार से आ जाए और युद्ध करना छोड़ दें तो बहुत ही सुख बात है, हो सकता है ऐसा। अथवा यदि हमारे पुत्रों को दुर्बुद्धि हो गई और वो धर्म उनके अंदर में आ गया, उन्होंने कहा जब हम युद्ध नहीं करेंगे पांडव लोग ही रह जाएंगे, तो ये तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, आखिर में हुआ क्या है, सोच रहा है। इसी तरह संसार में युद्ध चल रहा है, मन के अंदर में कितना युद्ध चल रहा है, सब समय किसी का मन एक सेकेंड के लिए बैठा नहीं है, विशेष करके जो भजन नहीं करते उनका सब समय चिंता, सब समय चिंता, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या होगा। भगवान, जो भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते उनकी यही, भक्तों को क्या होती है, भक्ति कैसे बढ़े, भगवान का भजन नहीं हो, बस एक ही चिंता है और दूसरी चिंता नहीं, और इन लोगों को कितने तरह की चिंता है। किंतु अधिकांश लोग के जितने हैं उनके प्रश्न कैसे हैं, प्राकृत हैं और संसार के विषय को लेकर के ही संदेह, चिंता, दुश्चिंता, संकल्प, विकल्प करते हैं और दूसरा कुछ नहीं, भविष्य में क्या होगा। किंतु महाराज परीक्षित की बुद्धि सम्यक व्यवस्थित होने के कारण ही उन्होंने केवल कृष्ण की लीला कथा को ही पूछा, इसके में कृष्ण की कौन सी लीला चलित हुई, मथुरा में, वृंदावन में, द्वारका में कौन कौन सी लीला की, कैसे आविर्भूत हुए, कहाँ आविर्भूत हुए, कौन सी ब्रज में कौन सी लीला की, बस यही सब कथा एक कृष्ण की। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित के प्रश्नों को सुन करके बड़े प्रसन्न हुए, अप्रसन्न हे राजर्षि सत्य, सचमुच में तुम्हारी बुद्धि सम्यक रूप से व्यवस्थित है, तुमने ऐसा प्रश्न पूछा, ये प्रश्न ही संसार को उद्धार करने वाले, प्रश्न करने वाले को, वक्ता को, हमें भी तुमने आज हमारा भी उद्धार कर दिया, ये कहने का था, तुम्हारा तो उद्धार हो गया, प्रश्न किया और तुम्हारा हो गया, और हमारा भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हृदय में उद्दीपना हो रही है, कृष्ण की सारी लीलाएं हमारे हृदय में प्रकट, जिसके हृदय में कृष्ण की सारी लीलाएं उत्पन्न हो जाएं, प्रकाशित हो जाएं, फिर उसका क्या बाकी रहा, आज जो प्रश्न कर रहा है वो कैसे प्रश्न किया होगा, जिस विषय में जो चिंता करता है उसी में तो प्रश्न करता है। परीक्षित महाराज उसी में डूबे हैं, उसमें से एक रत्न निकाल करके प्रश्न किया, दूसरा किया, अर्थात उसी की चिंता कर, और जब इनको उद्दीपना हुई तो कृष्ण की बाल्यकाल से लेकर के और अंत तक जितनी उनकी लीला कथाएं, रस भरी लीलाएं हैं, सब उनको स्मरण कर जी, अब तो हमारा उद्धार आपने कर दिया। व्यास जी पढ़ाते समय में इनको पढ़ा रहे थे, उतना उद्दीपना नहीं हुई होगी, क्योंकि अभी सीख रहे हैं, अभी विद्यार्थी हैं ना, उस समय नहीं होगी। अब विद्यार्थी होने के बाद में जब लीलाओं का चिंतन किया होगा और जब वो सब समय अनुभव कर रहे हैं, अब कोई पूछे तो अब उद्दीपना होकर, इसलिए कहते हैं कि इन कथाओं के द्वारा ये लीलाएं हमारे हृदय में आईं, अब हमको भी तुमने कृतार्थ कर दिया इस प्रश्न के द्वारा ही, और समवेत श्रोत्री मंडली, जिसमें कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी सब प्रकार के लोग हैं, उनको भी तुमने कृतार्थ कर दिया। कैसे, हमारी ये मन की भावनाएं जो प्रकट होंगी, लीला कथाएं होंगी, उस रस में ये लोग डूब जाएंगे, उनका कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या सब कुल भूल जाएगा और कृष्ण के प्रति उनकी भी ऐसे ही नैष्ठिकी प्रति हो जाएगी, इन सब का भी कल्याण हो जाएगा। कृष्ण विषय कथाएं जो हैं, प्रश्न है, इसमें एक अचिंत शक्ति है, जैसे कृष्ण में अचिंत सर्वशक्तियां हैं और कृष्ण से अभिन्न कृष्ण का नाम और कृष्ण की लीला है, तो इसमें भी अचिंत शक्ति होगी। इन लीलाओं कथाओं में ऐसी एक अचिंत शक्ति है कि उसके डोर से अब तक आप लोग बंधे हुए हैं, नहीं तभी छिन्न भिन्न होकर के कहाँ चले जाए। और सब जगह किसी भी मठ मंदिर में 2, 4, 5, 6 आदमी रहे, आप लोग सब कुछ जुड़े हुए हैं इन कथाओं के माध्यम से। एक आदमी जोड़ता है किस लिए, विषयों के संग्रह के लिए जुड़ते हैं और उसमें उनको सभी दुखी रहते हैं, उनका फिर छिन्न भिन्न हो जाता है। भगवान की लीला कथाओं के माध्यम से कड़ी से जो जुड़ता है उनका कल्याण और संभाल, उसमें अचिंत शक्ति होती है। ये शक्तियाँ की लीला कथा के माध्यम से कृष्ण ही हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, धीरे मालूम नहीं हो रहा किंतु हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए भगवान के चरण के से निकल करके जैसे गंगा जी अपने दर्शन से अपने स्नान करने वाले को और स्पर्श करने वाले को, स्पर्श दर्शन और स्नान इत्यादि किसी न किसी प्रकार से तीनों को पवित्र कर देती हैं, उसी प्रकार से यह हरि कथा थोड़ा भी जतकिंच संबंध हो तो जीव मात्र को ही पवित्र कर देती है, जीवों के तीन कुल को पवित्र कर देती हैं। जैसे शालग्राम शिला, एक आदमी को ड्यूटी है रोज यमुना जी में स्नान करेगा, गंगा जी में स्नान करेगा और एक सुंदर घड़े में मांज करके वहाँ का पानी लेकर के ठाकुर जी के लिए रखते। पुजारी जी नियमित रूप में स्नान इत्यादि तिलक आनने कर करके वो घड़ा को उठाया और शालिग्राम ठाकुर जी को स्नान करा करके अर्चन इत्यादि और वहाँ पर रख दिया। अब सब लोग ठाकुर जी को प्रणाम करके और उस चरणामृत को ग्रहण कर रहे हैं, तीनों लोगों का उद्धार हुआ। अच्छा किसका अधिक हुआ, अधिक किसका हुआ कि जो पानी ले आया, जो स्नान कराया, आज जो लिया। हम समझते हैं कि जिन्होंने लिया उसी का, क्योंकि वो स्नान करा करके अंत में वो भी पान करेगा, इसलिए पान पान अधिक हुआ। इसलिए श्रोता जो है ना परीक्षित महाराज जी उस वक्ता से भी श्रेष्ठ हो रहे हैं, कथाओं प्रश्न कर रहे हैं और साथ साथ में गैया को दूध करके उसका दूध भी पी रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जैसा प्रसंग होता है उसके प्रसंग के अनुसार, किंतु कथा सुनने वाले को ही सर्वत्र कहा गया। इसी कथा की महिमा ही, जो कथा कहने वाला है, जो कथा सुनने वाला, कथा सुनने कहने वाला से भी कभी कभी कथा सुनने वाले को रोमांच कम पुलस इत्यादि भाव आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है और कभी कभी उन्नत अधिकार रहने पर वक्ता करता है, किंतु कल्याण सभी का, श्रोता वक्ता प्रश्नकर्ता तीनों का होगा। उसी प्रकार से जब प्रश्न में ही इतनी अचिंत शक्ति है जो तीनों को, प्रश्न करने वाले को, उत्तरदाता को और श्रोतृमंडली सबको कृतार्थ कर देता है, तो इसका उत्तर सुनने वालों को क्या नहीं होगा कि मूर्ति न्याय से ये बतला रहे। परीक्षित महाराज जी ने कथा सुना और कुछ नहीं किया, उनको समय नहीं मिला। यदि उनको कथा सुनने के बाद में समय मिला होता तो क्या किए होते, क्या करते, हरिनाम कीर्तन करते, भागवत की कथा फिर से सुनते कहते और 9 प्रकार की 64 प्रकार की भक्ति कांगों का पालन ही करते, यही तो करते। इसलिए कथा सुनने मात्र से ही उनका कल्याण, एक एक अंगों का पालन करने से ही भक्ति हो जाती है और कृतार्थ हो जाता है। परीक्षित महाराज जी कथा का श्रवण किया, परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, प्रहलाद महाराज जी ने स्मरण किया, लक्ष्मी जी ने उनका अंग्री सेवन किया और पृथ्वी महाराज जी ने उनका पूजन किया, हनुमान जी ने उनके चरण की सेवा की, बलि महाराज जी ने सर्वस्व आत्मनिवेदन किया, इसी तरह से एक एक द्वारा ही, किंतु मूल है हरि कथा श्रवण। और ऐसा इनमें कोई नहीं है जो हरि कथा का श्रवण नहीं किया, अक्रूर किया। जब प्रश्न में ही इतनी शक्ति है तो उसके उत्तर जो कथा होगी उसमें कितनी शक्ति होगी। प्रश्न कौन करेगा? जो विभावित होता है जिस विषय में उसी विषय में वो प्रश्न, जो लीला कथा में विभावित होगा वो लीला कथा का प्रश्न करेगा। आप लोग भी ऐसा चेष्टा कीजिए, लीला कथा विषयक, भगवान के तत्व विषयक, लीला कथा विषयक, उनके माधुर्य विषयक प्रश्न। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद में वर्णित है। कितना बजा भाई?
7:08 देर है।
बहुत देर हो गई। अभी हम लोग 10:11 अनुपठितो ध्यातो आदृतो वा अनुमोदित सद्दत पुनाच सद्धर्मो देव विश्वद्रोह। एकादश स्कंद में ऐसा वर्णन किया भगवान की लीला कथाओं में ऐसी एक आश्चर्यजनक अचिंत शक्ति है। यदि कोई श्रीमद्भागवत में वर्णित कथाओं का शुरू तो श्रवण करे, अनुपठित हो, अनुगत्य में पठन करे निरंतर, ध्यात उसका ध्यान करे, आदृत हो उसका आदर भी करे, वा अनुमोदन, वाह बहुत सुंदर कथा हो, अनुमोदन भी करे, तो सद्य पुनाति सद्धर्मो विश्व देव विश्व द्रोहो भी, देवताओं का यदि द्रोह करता है, विश्व का भी द्रोह करने वाला, आचरण करने वाला व्यक्ति भी, ये जो सद्धर्म है लीला कथाओं का सुनना, ये उसको सबसे मुक्त कर देती है। ये देखो, दृढ़ श्रद्धा रखो ऐसे। सत सद्य पुनाति सद्धर्मो, सद्धर्म माने क्या? धर्म शरीर का धर्म, मन का धर्म, आत्मा का धर्म। सद्धर्म किसको कहते हैं? सत अर्थात भगवान ही एकमात्र सत्य, त्रिसत्य सत्य की योनि है। और भगवत भक्त गणों के आचरित श्रवण कीर्तन आदि रूप धर्म का श्रवण से, कीर्तन से, ध्यान से, आदर से, अनुमोदन से विश्वद्रोही भी सद्यपतित हो जाता है। सत माने क्या? जो सत साधु लोग जो आचरण करते हैं भगवत भक्त, बस इनका श्रवण करने से, अनुमोदन करने से भी, आदर पूर्वक श्रवण करने से, कीर्तन करने से, ध्यान करने से भी उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए हे महाराज तुम धन्य हो, आज हमको तुमने भी कृतार्थ कर दिया, ऐसे प्रश्न के द्वारा। और नहीं तो मैं चुपचाप ध्यान करता बस एक, और इस समय में कीर्तन श्रवण चिंतन सभी एक साथ में हमारा। इसलिए लीला कथाओं के प्रति हम लोगों का भी ऐसा अनुराग होना चाहिए। आज यहीं तक हमारे नन्नुमल
गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्राप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणन्तिके।
दशम स्कन्ध प्रथम अध्याय। सुखदेव गोस्वामी ने भी महाराज परीक्षित की अभ्यर्थना कर और कथा कहने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, हे राजर्षि सप्तम, आपकी बुद्धि सम्यक रूप से व्यवस्थित है, व्यवसात्मिका है। उन्होंने पूछा जी क्यों, कैसे? जब वासुदेव की कथा में जिसकी निष्ठ की रति उत्पन्न हो गई है वह अवश्य ही सम्यक व्यवस्थिति वाला है। जिनकी एकमात्र भगवान की लीला कथाओं में बुद्धि निष्ठ की रति उत्पन्न हो जाती है यही व्यासात्म का बुद्धि का लक्षण है। आपकी ऐसी हो गई है, आपने इसके लिए खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। वासुदेव कथा प्रश्न ये भी बतला है, जब भगवान की लीला कथाएं प्रश्न करने वाले को वक्ता का उत्तर देने वाले को और उसको सुनने वाले सभी लोगों का ही उद्धार करती है, जैसे गंगा जी का पानी अथवा शालग्राम शिला के द्वारा चरणामृत। गंगा जैसे तीनों लोगों को पवित्र करती है अथवा दर्शन करने वाले को, स्पर्श करने वाले को, स्नान करने वाले को, सबको पवित्र कर देती है। उसी प्रकार से इन लीला कथाओं से तनिक भी संबंध होने पर, संबंध होना चाहिए तो उसको उद्धार कर देती है, किंतु बैठने से ही नहीं होगा। आकर के बैठ जाते हैं इधर उधर की चिंता कर रहे हैं, नहीं तो मनोयोग के साथ में श्रवण करना और उसको अमल करने की चेष्टा करनी चाहिए। सात्विक व्यक्ति इसको ग्रहण कर लेता है, राजसिक व्यक्ति नहीं कर सकता। धीरे धीरे